मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 मई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रेणु सिंह, आप फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, धावल आर चौधरी, आप सूरत गुजरात से हैं, अजय कुमार सैनी, आप ग्राम हथियागढ़ जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, और गोविंद राम पटेल, आप गांव कसदौल जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं। तो रेणु, धवल, अजय और गोविंद, आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय में हम लोग जो कल बात कर रहे थे रणनीति की और कट ऑफ मार्क्स के बारे में, तो उसी को मिला जुला करके आज कुछ और बातें करेंगे क्योंकि वह विषय काफी लंबा है और काफी विश्लेषण की मांग करता है। अदरवाइज सिर्फ डेटा बता देने का तो कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन मुख्य विषय से पहले आइए थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस के तहत कुछ जान लेते हैं। दो खबरें मुझे सबसे महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही हैं कल की और अखबारों में भी देखने के बाद सिविल सर्विस की दृष्टि से। एक आपने न्यूज में सुना कि परसों हमारे कुछ जो इंजीनियर्स थे अफगानिस्तान में ऑलरेडी विद्युत प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनका अपहरण कर लिया गया है। 7 इंजीनियर्स का अपहरण कर लिया गया है, उसको लेकर के अब भारत काफी चिंतित है और खबरों में आप सुन ही रहे हैं। ये जो अपहरण हुआ है मित्रों, ये अफगानिस्तान में हुआ है और अगर आप थोड़े से भी लंबे समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में भारत के बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलपमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 100 से भी अधिक, और पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। और अगर हम अभी भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को देखें तो बहुत अच्छे संबंध है भारत और अफगानिस्तान के, राइट। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आप 2013-14 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उस समय के पेपर उठा करके देखेंगे तो सेकंड पेपर में, जनरल स्टडीज मेंस के सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप ये मान करके चलिए कि फिर से जो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध है वह यहां एक महत्वपूर्ण होने की ओर इंगित कर रहा है। देखते हैं कि आगे स्थिति कैसे डेवलप होती है, लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको भारत अफगानिस्तान के संबंधों की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बता सकूं। आगे हो सकता है कि मैं इस टॉपिक को टेकअप करूं, लेकिन आप सबको चाहिए कि आप थोड़ी सी बैकग्राउंड दोनों देशों के संबंधों के बारे में निश्चित रूप से देख लें, राइट फ्रेंड्स। जो दूसरी खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और वो ये कि उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में क्या दूसरे राज्यों में भी है, मतलब मध्य प्रदेश में तो है, कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको सरकारी आवास अलॉट किया जाता है, राइट। तो सरकारी आवास उनको मिलता है और उसमें फिर वो रहते हैं, चाहे फिर वो राजनीति में है नहीं है, या राजनीति में है भी तो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो कुछ भी स्थिति हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर वो कानून में है तो बट नेचुरल है कि वो उसके लिए एलिजिबल है। उत्तर प्रदेश में भी यही है और उसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि नहीं, उन्हें बंगला खाली करना चाहिए, राइट। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस संदर्भ में। असली में हमारे लिए देखिए, सिविल सर्विस की जब हम तैयारी करते हैं तो घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उन घटनाओं के पीछे जो तथ्य हैं, कारण को समझने के लिए उन तथ्यों को जानना जरूरी है, जो उसका इम्पैक्ट है, उसके पीछे जो विचार है, जो धारणाएं हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और स्टूडेंट क्या होता है कि घटनाओं में कुछ इतना ज्यादा खो जाता है, क्योंकि घटनाओं में थोड़ी सी रोचकता भी होती है, याद रखना आसान होता है, तो उसको पढ़ लेते हैं, उसके जज्ब में आ जाते हैं, उसके कब्जे में आ जाते हैं और उसके तहत, या कह लीजिए उससे जो विचार रिफ्लेक्ट होते हैं, उससे जो धारणाएं बनती हैं, उसको मिस कर देते हैं। यहां आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी वास्तव में कर रहे हैं तो आपको विचारों को पकड़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस घटना को देखें तो इस घटना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दो इम्पोर्टेंट तथ्य कहे हैं। पहला यह कि जो कानून में ये संशोधन करके व्यवस्था कर दी थी यूपी गवर्नमेंट ने कि नहीं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनको सरकारी आवास दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह संशोधन ही अपने आप में असंवैधानिक है, इलीगल है, गलत है। पहली बात, मतलब कानून ही आपने गलत बनाया है, संविधान में फिट नहीं बैठता। दूसरी जो बात कही वो कही कि ये जो कानून है जो बनाया गया है ये अपने आप में ही संविधान में जो समानता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहा है, समानता के सिद्धांत के अगेंस्ट है। देखिए, जब चीफ मिनिस्टर थे ठीक है, वो एक पद पर हैं, राज्य के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो स्वाभाविक है कि आपने उन्हें बंगला दे दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने पद पर नहीं रहते हैं तो सीधी सी बात है कि अब वो नागरिक हैं, और अगर कुछ हैं भी तो अपने राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, तो नागरिक हैं तो सीधी सी बात है कि वो समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। तो यहां उन्होंने समानता के सिद्धांत को देखिए बड़े अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मौलिक अधिकार में समानता एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप देख रहे हैं कि जो जनहित याचिकाएं आती हैं उनमें ज्यादातर जो डिसीजन होते हैं वो समानता, निजता, जीवन की स्वतंत्रता, इन्हीं अधिकारों के ही विश्लेषण के तहत डिसीजन दिए जाते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी, आप सोचिए कि सरकारी अधिकारी है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ, जो टॉप मोस्ट पद होता है भारत सरकार के तहत, तो समानता अगर हम यूपी गवर्नमेंट के उस कानून को ले लें तो इसका मतलब है कि उनको भी सरकारी मकान रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए, और अगर उनको नहीं मिल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, कोई भी हो, उनको क्यों मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसका थोड़ा सा विश्लेषण कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, और बल्कि मैं चाहूंगा कि आप इस तथ्य को नोट कर लें ताकि इसका उपयोग आप अपने उत्तर लिखने में कर सकें। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और मुख्य विषय के तहत मैं आज आपको कट ऑफ मार्क्स कुछ बताने जा रहा हूं। कल मैंने आपसे स्ट्रेटजी के महत्व के बारे में बातें की थी और मुझे खुशी है कि कुछ स्टूडेंट ने उसे काफी पसंद किया। फ्रेंड्स, आप अभी जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आप देखिए कि उनके बहुत से प्रोग्राम्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट उनको बुला करके उनसे आपको मुखातिब करा रहे हैं अपने क्लास स्टूडेंट्स को, और वो अपनी बात रख रहे हैं। पर एक बहुत अच्छा अवसर मुझे ये लगता है जब आपको उन सबको सुनना चाहिए। आप सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश भी कीजिए, तो आप पाएंगे कि जो एक सामान्य बात जो हर कोई कहता है वो उसको शब्द वो अलग अलग देते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी की बात जरूर करते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब ही होता है एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन। आप इतने बड़े एग्जामिनेशन में इस तरीके से एट रैंडम तैयारी नहीं कर सकते कि जब जो मर्जी में आया आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से चाहे आप पढ़ रहे हैं, आप रट रहे हैं, इस तरीके से इसमें काम नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, और क्षेत्र बहुत बड़ा है तो आपको अपने लिए उन जगहों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां आप अटैक करना चाहते हैं, राइट? तो उसी रणनीति के तहत शुरुआत के अंतर्गत मैं आपको अब कुछ कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूं। पहले कुछ कट ऑफ मार्क्स मैंने फ्राइडे को बताए थे, कुछ स्टूडेंट ने फिर ये कहा कि सर PH1 PH2 PH3 के भी आप कट ऑफ मार्क्स आप बताएं। मैंने उस समय मित्रों माफी चाहूंगा कि मैंने जानबूझ करके नहीं बताया था, क्योंकि आंकड़ों का बहुत ज्यादा जब जमावड़ा हो जाता है तो चीजें धुंधली पड़ने लगती हैं। लेकिन मैं अभी एक बार आपके सामने फिर से वो कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूं, और कुछ दूसरे मार्क्स भी जो इस बीच में और हैं जो रह गए थे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए कि जो प्री एग्जामिनेशन है, अब मैं केवल इसी साल के बता रहा हूं, पिछले नहीं बता रहा, पिछली बार फ्राइडे को मैंने पिछले भी बताए थे। इस बार जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्री रहा है फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी में 105.35 है, ओबीसी के लिए 102.66 है, एससी के लिए 88.66 है, एसटी के लिए भी सेम है 88.66, फिर जो PH1 है उनके लिए है 85.34, PH2 के लिए है 61.34, और PH3 के लिए है 40, राइट? ये प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स है, न्यूनतम मार्क्स है। अब आप मेंस का देखिए कि मेंस का कट ऑफ मार्क्स कितना रहा। मेंस का जनरल कैटेगरी के लिए था 809, ओबीसी के लिए है 770, एससी के लिए है 756, एसटी के लिए है 749, पीएच 1 के लिए है 734, पीएच 2 के लिए है 745 और पीएच 3 के लिए 578, राइट। और जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अगर इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़ दिए जाएं, तो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ मार्क्स देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए है 1006, ओबीसी के लिए है 968, एससी के लिए है 944, एसटी के लिए है 939, पीएच 1 के लिए है 923, पीएच 2 के लिए है 948 और पीएच 3 के लिए है 830। फ्रेंड्स, ये कट ऑफ मार्क्स हैं, राइट। तो एक सामान्य सी धारणा, आप जिस कैटेगरी में को भी बिलोंग करते हैं, आप केवल उसी का ध्यान रखें कि मेरी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स कितने रहे। कट ऑफ मार्क्स का मतलब है न्यूनतम, इससे कम पाने वाले फिर लिस्ट में जगह नहीं पा सके हैं, ये कट ऑफ मार्क्स का मतलब हुआ। फिर फ्रेंड्स, जो रिटन एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू हैं, जो टॉपर्स वगैरह रहे हैं, उनके मैं आपको केवल थोड़े से मार्क्स बता देता हूं कि इस बार के जो, क्योंकि टॉपर के प्रति देखिए हम सबके मन में एक आकर्षण होता ही है और होना भी चाहिए। अच्छे के प्रति आकर्षण कोई बुरी बात नहीं होती है, होना ही चाहिए, और एक सद्भावपूर्ण आकर्षण होना चाहिए कि काश हम भी कुछ ऐसा कर सके। मित्रों, आप जो टॉपर रहे जानते हैं, आप अनुदीप शेट्टी टॉपर रहे हैं, जिन्होंने टोटल 1126 मार्क्स स्कोर किया है, टोटल 1126 मार्क्स, राइट। इनमें जो 1126 है, मैंने शायद कल आप लोगों को बताया था या मुझे ध्यान नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि उन्होंने रिटेन में 950 मार्क्स स्कोर किए और फिर इंटरव्यू में उनको 176 मार्क्स मिले, और जो सेकेंड पोजीशन पर जो अनु कुमारी हैं, वो इनसे केवल दो नंबर ही कम हैं, केवल दो नंबर। इससे आप सिविल सर्विस की जो कॉम्पिटिशन होता है उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इनके रिटेन में आए थे 937, यानी कि 13 मार्क्स कम रहे अनुदीप से, लेकिन इंटरव्यू में इन्होंने काफी कवर किया। अनुदीप को जहां इंटरव्यू में 176 मार्क्स मिले, वहीं अनु कुमारी ने 187 मार्क्स स्कोर किए और वो दो नंबर, टोटल में दो नंबर उनसे पीछे रह गए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, सॉरी आपके रिटेन के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, वो अनुदीप के ही नहीं है। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं रिटेन में, जहां तक अभी तक मैं जो ढूंढ पाया हूं, वो है अतुल प्रकाश के। अतुल प्रकाश जिन्होंने रिटेन में 974 मार्क्स स्कोर किए, 974, लेकिन इंटरव्यू में उनके काफी कम रह गए। इंटरव्यू में वो स्कोर कर पाए केवल 143, और इस तरह से जब दोनों का टोटल कर देते हैं तो उनके आ जाते हैं 1117, और इस प्रकार से लिस्ट में उन्हें चौथा स्थान मिला। तो मित्रों, ये कुछ डेटा थे कट ऑफ मार्क्स के, वो मैंने आप सबके सामने रखे हैं। अब इनके विश्लेषण की जहां तक बात है, वो अब हम आगे देखेंगे। कम से कम एक सामान्य सा जो स्कोर है वो आपके दिमाग में इसके माध्यम से मैंने पहुंचा दिए थे। जहां तक न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स का सवाल है, मित्रों मैं आज आपको थोड़े से ही क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि वही आपके काम के मुझे जान पड़े। लेकिन इसमें एक क्लिपिंग है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का, नई दुनिया का है, चीन के आर्थिक गलियारे की काट। ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, मैं चाहूंगा कि आप सब इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, और केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सब आप नोट भी कर लें। मित्रों, सभी ईमेल लिखने वाले फ्रेंड्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इसमें शाश्वत अग्रवाल का मेल मिला है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। मैंने जो स्वच्छता अभियान के इंटर्नशिप की बात की थी, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है। शाश्वत, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस पर अमल किया, और आपने सात युवाओं का एक ग्रुप भी बना लिया है, और गांव भी आपको मिल गया है दिल्ली का, और वहां आपने काम भी शुरू कर दिया है। तो शाश्वत और आयुष गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद मेल लिखने के लिए। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।